मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत और सीधे सीधे मैं मुख्य विषय पर ही आ रहा हूं, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अंततः हम कैसे अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें दो विकल्पों तक लेकर आ सकें, दो विकल्पों तक हम कैसे पहुंचें। आप थोड़ी सी मेरी पिछली बातों को याद करने की कोशिश कीजिए। उसमें मैंने आपको एक उपाय बताया था कि हमें 30 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं जिनके बारे में हमें संदेह है। 35-40 क्वेश्चन तो हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उससे बात तो बनेगी नहीं, तो बात नहीं बनेगी। फिर चाहे हमने 35 सॉल्व किए हों या 5 सॉल्व किए हों, बात एक ही है, उसका कोई अतिरिक्त लाभ हमें नहीं मिलना है। हमें तो किसी भी हालत में अपने मार्क्स को 52% के ऊपर पहुंचाना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करें जिनके बारे में हमें संदेह है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बताई है 30। और याद करने की कोशिश कीजिए कि उन 30 में से हमें 18 तो सही करने ही करने हैं। यहां देखिए, मैं दो विकल्पों की बात कर रहा हूं, 4 विकल्प होते हैं, इनमें से दो विकल्प हमें खारिज करने हैं बस। अगर हम 3 खारिज कर सके होते तो फिर तो हमारे वो 40 में शामिल हो जाएंगे ना, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम 2 विकल्प खारिज कर पा रहे हैं या 1 भी खारिज नहीं कर पा रहे हैं, जो भी स्थिति हो, हमें 2 विकल्प तक पहुंचना है, यानी कि 2 खारिज करने हैं। तो अगर हम यहां थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को लें, संभाव्यता का सिद्धांत जिसे आप कहते हैं वो लें, तो हम 2 विकल्प तक आ गए हैं, यानी कि 2 में से कोई ना कोई एक तो सही है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो संभावना कितनी हुई सही होने की? संभावना हो गई सही होने की 50%। यानी कि अगर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस पैटर्न पर, तो इसमें से 15 के सही होने की तो संभावना है, और सच पूछे तो सामान्यतः ऐसा हो जाता है। ठीक है, 15 नहीं होंगे, 13-17 हो सकते हैं, 14-16 हो सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास ही होंगे। लेकिन अगर 17-13, 13-17 हो गए तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं। क्योंकि मैं आपको और भी थ्योरी बता चुका हूं कि अगर हमने मान लीजिए कि इसमें से 18 सही कर लिए तो 12 गलत होंगे। 12 गलत होने का मतलब है कि 4 नंबर कट जाएंगे, 4% कट जाएंगे, तो कोई बात नहीं, तब भी हम 52 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि अब हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि हम एकदम सही तक पहुंचे, हमारी कोशिश यह होगी कि हम 2 को खारिज करें। और ऐसा क्यों है? क्योंकि संभाव्यता के सिद्धांत से हमें यहां बेहतर प्रदर्शन करना है। 50-50 में तो 15 हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें 18 सही करना है, राइट? तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि 50-50 तक पहुंचे। मैं आगे फिर कैसे 3-4 और सही हो जाए उसके बारे में बताऊंगा। आइए अब हम प्रैक्टिकल पर आते हैं सीधे सीधे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुझे सुनने के साथ साथ आपके आंखों के सामने वो क्वेश्चन भी हो। मैं जो आप सबसे बातें कर रहा हूं दोस्तों, ये डी सीरीज का प्रश्न पत्र मेरे सामने है, और उसके 1-2-3 प्रश्न से ही मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना। आप देख लीजिए कि यही प्रश्न आपके अपने सीरीज में किस नंबर पर है, और आप मेरी बातों को तभी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और इनफैक्ट सही मायने में आपको फायदा हो सकेगा, जबकि वो प्रश्न आपके सामने होना चाहिए। तो प्रश्न आप इससे पहले कि मुझे आगे सुने अपने सामने खोल कर रख लें, क्योंकि तभी आपका दिमाग मेरे अनुदेशों के अनुसार काम कर सकेगा। अपनी तो बार बार रिकॉल करने लगेंगे, रिकॉल करने में आपका फोकस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं अब जिस पर बात करने जा रहा हूं ये बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सामान्य बात नहीं है। अब ये बात अलग है कि आपको सामान्य लगे या सामान्य से भी बेकार लगे, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं अभी फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है जिसके बारे में मैंने इससे पहले चर्चा भी की थी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी आप उसके डायमेंशंस को समझ पाएंगे ना, कि वो कहां फंसाने की कोशिश करता है, कहां हमको उलझाता है, कहां हम उससे कैसे बच करके निकले, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब मैं आपसे तरीके के बारे में ही बात करने जा रहा हूं, और इसका एक तरीका नहीं है, 2 तरीके नहीं है, 3 तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तब हम अनुमान लगाने के मामले में एनरिच हो पाते हैं, समृद्ध हो पाते हैं, हमारी क्षमता बढ़ पाती है, और यही सही मायने की क्षमता भी है। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, अंडरलाइन कीजिए, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, मतलब पूरा सांस्कृतिक इतिहास है। जब सांस्कृतिक इतिहास कह रहा है तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? क्लिक होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता, याद रखिए सांस्कृतिक वैदिक नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भी भारतीय इतिहास है, भारतीय संस्कृति है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक, अब आप घबराइए मत कि बाप रे क्या हम इतनी समय की संस्कृति को जानेंगे, यस आपको जानना चाहिए और आपके सिलेबस में है, इतिहास में आप यही तो पढ़ते हैं, आपको मालूम है, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अब आप देखिए कि एक साथ वो आपके दिमाग को कहां फैला रहा है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, युग्म यानी कि जोड़ा उसने दिया हुआ है। अब देखते हैं कि युग्म क्या है, ध्यान से। पहला है परिव्राजक, परिव्राजक, और उसके आगे डैश दिया हुआ है परित्यागी एवं भ्रमणकारी, राइट। सेकेंड दिया हुआ श्रमण, और उसके सामने है उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरा है उपासक, उसके आगे है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी शब्द में संदेह हो रहा है, उसका अर्थ सही सही मालूम नहीं हो रहा है हिंदी को पढ़ने के बाद, और यदि आप थोड़ा सा भी अंग्रेजी समझ सकते हैं, थोड़ी सी भी, तो बेहतर होगा कि उसका इंग्लिश वर्जन भी देख लें, उससे आपको मदद मिल सकती है। अगर अंग्रेजी से आप इतना लाभ उठा सकते हो तो, अगर नहीं उठा सकते हो तो समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ये तीन दिए हुए हैं। अब हम सुमेलित में नहीं जा रहे हैं, हम अब यही देखेंगे परिव्राजक। अब आप देखिए कि दो तीन स्थितियां आपके सामने हो सकती हैं। आप इतिहास के स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि ना हो। आप जैन धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, कोई जैन धर्म और बौद्ध धर्म या कोई धार्मिक व्यक्ति के परिवार का सदस्य आपका मित्र हो सकता है, या आप कभी धार्मिक सत्संगों में जाते होंगे, कभी धार्मिक उपदेश सुन लेते होंगे, कभी चैनल वगैरह का खोल लेते होंगे, इस तरह की कोई भी स्थिति हो सकती है। अब आप देखिए कि वो नॉलेज कहां से आप गेन कर रहे हैं, आप सोच करके देखिए। यही आपको सिविल सर्विस को समझना होगा, सिर्फ किताब तक नहीं, और किताब तो आपने पढ़ी ही होगी। हो सकता है कि किताब में ये शब्द आपको मिले हो लेकिन इस रूप में ना मिले हो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबों में ही, तो बकायदे ये शब्द आपको मिलेंगे लेकिन एग्जैक्ट इस रूप में नहीं मिलेंगे। हाँ, जब आप उस वाक्य के बारे में अब विचार करेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि अच्छा अच्छा ये तो वही कुछ कह रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। लेकिन देखिए व्यवहारिक स्तर पर हम कैसे पढ़ते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, हम पढ़ करके निकल जाते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे तो एक अलग तरीके से उस पर विचार करेंगे तो वो अर्थ देने लगेगा। लेकिन हम सभी पढ़ाई ऐसा नहीं कर सकते, इस तरीके से हो ही नहीं सकती कि हम एक एक वाक्य को इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से समझें, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर हम बेसिक्स को समझ लेते हैं, पूरे के पूरे एनवायरमेंट को समझ लेते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, अंततः ये क्या चीज है, मोटे तौर पर इसे जान लेते हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि हम सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, राइट। परिव्राजक, तो इतने सारे में कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जब मैंने पहली बार प्रश्न इसकी चर्चा की थी तो मेरे पास बहुत से मेल आए। उसमें उन्होंने बताया कि सर मैं बौद्ध हूं और उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मैं जैन हूं उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सर मैंने ये शब्द उस किताब में पढ़ा था, कुछ ने तो कहा कि एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है। मेरे पास काफी उत्तर आए, लेकिन देखिए ये व्यवहार में क्या है, व्यवहार में तो अगर आपने एनसीईआरटी में इस शब्द को पढ़ा है तो अब इसलिए पढ़ा है, इसलिए आप उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उस पर प्रश्न पूछा गया है। पहले आप उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, पहले तो सामान्य तरीके से ही हम पढ़ करके निकल जाते हैं, और किसी के लिए भी ये बहुत ही सामान्य सी बात है, हम एक एक शब्द को लेकर के उनके अर्थ नहीं समझते हैं। तब तो फिर पता लगा कि पंचवर्षीय योजना ही हो जाएगी एक बारी सिलेबस को पढ़ने में। खैर, अब आप देखें कि अब हम क्या करें। यहां तीन स्टेटमेंट हैं, तीन युग्म हैं, और विकल्प तो चार होते ही होते हैं। तो अब हम सबसे पहले कोशिश कहां करते हैं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए स्टेटमेंट में कि वहां हम गलत और सही जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहां एक अच्छी बात यह है कि स्टेटमेंट तीन है, तो या तो हम सबसे पहले किसी एक स्टेटमेंट को पकड़ लें जो सही हो, जिसके बारे में आपको कन्फर्म है कि यार ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक इसी तरह से हम एक ऐसे स्टेटमेंट को पकड़ लें जो कि गलत हो। देखिए पढ़ा हुआ हटा दीजिए दिमाग से, पढ़ा हुआ होता तो फिर आपके लिए तो आसान हो जाता ना, तब तो आप कर ही लेते हैं, नहीं है अब तो हमको अनुमान के आधार पर लगाना है अंदाजा, लेकिन पढ़ा हुआ यहां काम आएगा ये मत सोचिए कि पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, नॉट एट ऑल, फिर तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। या तो हम इसमें से एक सही ढूंढ लें या एक गलत ढूंढ लें, और अगर एक सही और एक गलत ढूंढ लें फिर तो बात ही बन गई, फिर तो आप 100% सॉल्व कर लेंगे। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सही ढूंढें या एक गलत ढूंढें, या फिर एक सही और एक गलत दोनों ढूंढ लें, और यदि आप तीनों ढूंढ लेंगे तो फिर फर्स्ट राउंड में आप कर चुके होते, याद रखिए। तो अब आप इसमें देखिए ढूंढेंगे कैसे, मैं अब आपको उपाय बताता हूं और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट में हम आगे बात करेंगे। परिव्राजक, अगर आप भाषा विज्ञान के स्टूडेंट हैं या भाषा पर थोड़ी सी भी आपको पकड़ है, भाषा की समझ है, और आप नहीं जान रहे कि परिव्राजक क्या होता है, तो आप इसमें परि शब्द को पकड़ सकते हैं, परिक्रमा, परिक्रमा, परिक्रमा शब्द हम खूब यूज करते हैं। परिक्रमा कहां लगाते हैं, आप बाहरी क्षेत्र की क्रमण करते, क्रमण का मतलब क्या होता है, घूमना, परि का मतलब है बाहरी क्षेत्र की आप परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा, और यहां दिया हुआ है परिव्राजक, और उसके आगे दिया हुआ है परित्यागी, आप देखिए परित्यागी, ये यूपीएससी का संकेत है, जिसे मैं कहता हूं कि यूपीएससी के जो प्रश्न हैं एक उंगली से आपको इशारा कर रहे होते हैं कि मेरी तरफ आओ, देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहां जो परित्यागी शब्द है, परि, ये परित्यागी नहीं, परि, ये इशारा कर रहा है। और अगर आप भ्रमणकारी शब्द को पकड़ लेते हैं, तो जो मैंने परिक्रमा कहा कि जो भ्रमण करता रहता है, व्राजक, जो छोड़ छाड़ करके जाता रहता है, घूमता रहता है, चला गया है कहीं, आव्रजक शब्द आपने इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ा होगा, आव्रजक, ये हम जो जो बाहर विदेशी लोग होते हैं जो आते हैं जाते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं परिव्राजक। आप जोड़ दे, ज्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि आपको तो फटाफट करना है। तो अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप बकायदे पकड़ लेंगे कि यार ये तो सही है, एक सही हो गया, राइट। लेकिन यूपीएससी भी इतने आसानी से आपको सही तक पहुंचने का मौका नहीं देगा, वो अगली और बाधा दौड़ ही है, एक फिर से बाधा खड़ी करेगा, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि यार जिसमें तीन हो उसको देख लो, क्योंकि तीन तो जो जिसमें एक हो सॉरी उसको देख लो क्योंकि एक तो सही है, तो आप पाएंगे कि ए में भी एक है, बी में भी एक है और डी में भी एक है, तो तीनों तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। लेकिन आपके मदद के लिए सी में एक नहीं है विकल्प, तो सी तो नहीं हो सकता, सी को आप हटा दीजिए, और इसके बारे में आप जानते भी होंगे। दूसरा है श्रमण, अगर आप जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसे आप शब्द के आधार पर पकड़ लेंगे, जैसे कि परिव्राजक के बारे में मैंने आपसे बात कही, उसके आधार पर शायद पकड़ना आपके लिए संभव नहीं होगा, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद है उपासक, यह सरल शब्द है, उपासक, उपासना करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, सामान्य सा व्यक्ति, जैसे मैं तो भैया आपका तो बिल्कुल भक्त हूं, कहते हैं ना मैं तो आपका भक्त हो गया हूं, तो भक्त हो गए हैं का मतलब क्या हुआ कि आप मेरे फॉलोअर बन गए हैं, फॉलोअर बन गए हैं ना। तो यहां दिया हुआ है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, यानी कि जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है वो बौद्ध धर्म का उपासक बन जाता है, फॉलोअर बन जाता है, ये तो यार सही हो सकता है, उपासना करना ये हो सकता है, सही हो सकता है। तो चलिए अगर एक और तीन सही है, आप ट्रायल करके देख लीजिए, एक और तीन सही है, तो अब हम देखते हैं कि अब हम कहां पर पहुंचते हैं और क्या करते हैं, एक और तीन, राइट। अब इसमें एक और तीन को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए कि विकल्प में एक और तीन कहां है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले अपने सामने क्वेश्चन रख लीजिए, तो अब आप देखिए कि बी में दिया हुआ है एक और तीन, बी, और डी में दिया हुआ एक दो और तीन, बस एक और तीन अगर आप निकाल लेते हैं तो केवल दो ही विकल्प हैं, विकल्प बी या तो सही है या विकल्प डी सही है, आप 50% तक आ गए। अब आप इसमें से किसी पर निशान लगा दीजिए आपके पास कोई चारा नहीं है कि इसमें आपको दो तीन बी में निशान लगाना है या आपको डी में निशान लगाना है, ये चारा नहीं है, आप सोच नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप सोच लेंगे और कैसे सोच करके उसका इस्तेमाल करके। यहां भी हम थोड़े से जो थोड़ा सा अधिक लग रहा है, जैसे कहते हैं 19-20 का फर्क दिखाई दे रहा है, तो आपको अगर आपकी पढ़ाई ठीक तरीके से हुई है, विषय की आपने ठीक से तैयारी की है, तो आप देखेंगे कि आप 19-20 के शेड्स पकड़ने लगेंगे कि यार नहीं ये नहीं ये होगा, तो ठीक है आप 20 में लगा दीजिए, भले ही वो गलत है कोई बात नहीं है, उससे करके आप 15 की जगह 18 सही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप 50% तक पहुंच सकेंगे। हम लोग और भी प्रश्नों पर बात करेंगे, आप इस आधार पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, आपके साथ पास क्वेश्चन पेपर है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इससे आपको मदद मिलेगी, और फिर आप मुझे ईमेल के जरिए बताइएगा भी तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपने लेक्चर्स को उसके हिसाब से और अच्छे तरीके से आपके लिए उपयोगी बना सकूंगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, बिन्नी कुमारी सारण बिहार से, विष्णु मारन भोपाल से, सौरभ प्रताप, रोनिका जैन कोलारस मध्य प्रदेश से, और राजेश कुमार गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ, नमस्कार।